जब हम बाबा के ज्ञान में आए, सभी जाग रहे हैं ना? पक्का? आसपास देख लो, कोई मौज में तो नहीं है आपके आसपास में? कोई देख लेना, ये अलग मौज है। जब हम सब बाबा के ज्ञान में आए, हमें बहुत सारी बातों का ज्ञान मिला। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें ये पता चला कि हम ये पंच तत्वों से बनाया हुआ शरीर नहीं है, हम एक दिव्य, चैतन्य, पवित्र और शांत स्वरूप आत्मा है, और मैं ही वो आत्मा हूँ। फिर शिव बाबा का परिचय मिला, परमात्मा कौन है। कर्मों का ज्ञान मिला और चार युगों का ज्ञान मिला। मिला ना? हम सुनते थे चार युग है, पर चार युग में क्या होता है हमें नहीं मालूम। सत्युग के भी बारे में, त्रेता द्वापर के बारे में, कलयुग के बारे में हम लौकिक में भी सुनते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या इन युगों में होता है वो हमको नहीं पता। और इन चारों युगों में मेरा रोल क्या है वो भी हमको नहीं पता, है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चार युगों के अलावा एक और युग है, और वो है कौन सा युग है? नहीं, राइट। आप तो बहुत हुशियार है। अरे वाह, क्या बात है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। आप में से कौन है जो दो देशों के बीच का बॉर्डर देखा है? जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है। वेरी गुड, मजा आता होगा ना। हम बीच में खड़े हैं, इस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है। इधर का भी हम झंडा देख सकते हैं, इधर का भी झंडा देख सकते हैं, हैं जी, है ना। और लोग खास जाते हैं देखने के लिए, और उसमें बड़ा वो आता है। और जिस दिन दोनों देशों में वो झंडा लहराते हैं या पता नहीं कुछ वो करते हैं, खास देखने जाते हैं। और देखो, एक कदम उस तरफ दूसरा देश, एक कदम इस तरफ अपना देश, और हम खड़े बीच में, एक कदम की दूरी इधर उधर के खड़े हैं। जब हम बॉर्डर में खड़े होते हैं हमको लगता है कि बस ये एक देश है, एक एक दूसरा देश है। और भी कई देशों में जाते हैं, एयरपोर्ट, यहाँ ये देश है, यहाँ ये देश है। तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? किसका बॉर्डर है? यहाँ सतयुग है, और हमको दोनों दिखने में आ रहा है, दोनों दिख रहे हैं। बड़ा मजा आता होगा ना? नहीं आता? बॉर्डर में बड़ा मजा आता है, दोनों का झंडा देखने को मिलता है। अच्छा, जब हम बीच में खड़े होते हैं हमारा खिंचाव कहाँ ज्यादा होता है? जब दो देश के बॉर्डर में खड़े होते हैं ना, कहाँ आपका मन ज्यादा खींचता है? पक्का? अरे हमको तो लगा कि उस, क्योंकि हमारा देश तो हमने देखा हुआ है, वो देश हमने देखा ही नहीं ना, उस तरफ तो ज्यादा खींचता है ना, कि नहीं? अभी नया देश है पाकिस्तान, ये चाइना है। अब इंडिया का तो मुझे पता है, अब मेरे को इंटरेस्ट होगा ना चाइना जाके देखें, कि नहीं? तो खिंचाव कहाँ होगा, चाइना की तरफ कि इंडिया की तरफ? हेलो, अभी अभी आप लोगों ने ये झंडा लहराया देश का, इसलिए आप अपना देश बोल रहे हो, पर वास्तव में खिंचाव तो चाइना की तरफ ही है, मुझे मालूम है। जाके देखे तो सही, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है वहां पे चाइना में, और चीप है, और अच्छी अच्छे फैंसी फैंसी चीजें मिलती है। वो बाद की बात है, पहले जाएंगे तो सही ना, हाँ? उसमें फॉरेन का वो तो लेबल तो लगा हुआ रहता है। ठीक है, हम घूम घाम करके फिर आना कहाँ चाहेंगे? हमेशा अपना स्व, स्व में बड़ा सुख है, चाहे स्वदेश हो, चाहे स्व स्वयं का स्टेट हो। अभी आप अपने देश में हैं, लेकिन अपना स्टेट छोड़ के आए हैं, कोई गुजरात से राजस्थान यहाँ आए हैं, कोई आंध्रा से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, कोई हरियाणा से, अपना जो स्टेट छोड़ के आए हैं, तो चार दिन के बाद लगता है अपने स्टेट चला जाए, है अपने देश में पर अपना स्टेट, फिर अपने स्टेट में भी अपने मोहल्ला, अपने मोहल्ले में जाए, अपना घर जाए, अपने घर में अपने कमरा, अपना बिस्तर, अरे वाह कितना अच्छा लगता है। स्व में बड़ा सुख है, स्वदेश स्वधर्म है जी। तो बाबा कहते हैं कि ये जो संगम का समय है वो बहुत कम है, बहुत कम है। सतयुग त्रेता द्वापर, देखो सतयुग और त्रेता दोनों युगों में भी सुख तो है ना, उसको सुख धाम कहते हैं, क्योंकि सुख ही सुख है, सुख है वहां पे, क्योंकि वहां हर चीज मौजूद है, यू मेंशन एंड यू हैव, कोई चीज की कमी नहीं। संपन्न यानी चीजें हैं, फैसिलिटीज है, कंफर्ट है, सुख है। अब द्वापर युग में आएंगे, वहां दुख और सुख मिक्स मिक्स मिक्स। कलयुग में ज्यादा दुख कम सुख है जी, द्वापर में थोड़ा ज्यादा सुख कम दुख, और कलयुग में ज्यादा दुख कम सुख, और संगम में क्या सुख है भैया? 4 बजे उठो, बरसात में भीग के आओ क्लास में, धक्के खा के सेंटर से ट्रेन पकड़ के मत बनाओ, हैं? सुख है क्या? सुख है। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा सतयुग का सुख और संगम युग का सुख कौन सा अच्छा? ये सफेद ड्रेस पहनो, क्या सुख है उसमें? तो देखो लक्ष्मी नारायण कितना पहनता है, हैं? कितना सोना हीरा, अरे वाह, तो अब हम बाबा के पास आए किस लिए? सतयुग के सुख प्राप्त करने के लिए, ये बाबा जो सुख दे रहा वो सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, आप सब सच, बस ये बात है ना, हम स्वर्ग में जाने के लिए तो आए हैं ना, स्वर्ग में सतयुग में जाने के लिए कौन कौन हम बाबा के पास आए हैं? हम सभी सत्युग के लिए आए हैं, सत्युग के लिए पुरुषार्थ करें, सत्युग के लिए पुरुषार्थ करें, सत्युग के लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन उस पुरुषार्थ में हम ये भूल जाते हैं कि संगम युग में भी सुख है, और वो ये यहां ऐसा सुख है जो सत्ययुग में भी नहीं है, क्योंकि यहां रूहानी सुख है। सत्ययुग में सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, इसका कोई भान थोड़ा ही है। ठीक है, सब आनंद आनंद, सुख सुख, ठीक है, आनंद भी नहीं है ना वहां, तो आनंद भी यहां है, क्योंकि वहां वो कॉन्शियसनेस नहीं है। हीरा पहना, उनको ये थोड़ी पता मैं इतने हीरे पहने में अच्छी लग रही होंगी, ये कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस नहीं है। लेकिन हम बॉर्डर में हैं तो हमको मालूम है कि सत्युग का क्या सुख है और संगम का क्या सुख है, क्योंकि संगम में रूहानी डायरेक्ट आत्मा चार्ज होती है, डायरेक्ट आत्मा। और ये जो सुख पाने का समय जो है बहुत कम, सत्युग में हम इतने जन्म लेते, त्रेता में इतने जन्म लेते, द्वापर में इतने, कलयुग में इतने, और संगम का कितना समय है? संगम का समय कितना? जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ही। अब आप बताओ आत्मा इस शरीर में कब तक है? है मालूम है आपको? तो कितना समय है हमारे पास? कम माना कितना? कितना? और हमने कितना वेस्ट कर दिया? ये 100 साल है, 200 साल है, वो थोड़ी ही बात है। बात ये है कि मैं आत्मा इस प्रेशियस बॉडी, ये शरीर जो है संगम युग का बहुत अमूल्य शरीर है, जैसा भी फटा है, दर्द वाला है, जैसा भी है, सुंदर नहीं भी है, पर ये संगम युग का शरीर है। इसी शरीर में मैं आत्मा विराजमान होकर मुझे वो परमात्म सुख की प्राप्ति ये शरीर द्वारा मैं आत्मा प्राप्त करती हूँ। लक्ष्मी नारायण बनने के बाद थोड़ी शिव बाबा से प्यार की शक्ति के सुखों की प्राप्ति होती है। तो कौन से शरीर से हो रहा? बाबा के साथ, इसी शरीर के ना। तो इस शरीर को कभी शाबाशी दिया है? हाँ, मालिक है ना हम, आत्मा मालिक है ना इस शरीर का। तो इस शरीर को भी शक्ति देना चाहिए, इस शरीर को भी गुड वाइब्रेशंस, गुड विशेस देना चाहिए, शुभ भावना इस शरीर के लिए भी होना चाहिए ना। ये संगम युग का शरीर है, जैसा भी है, जैसा भी हमारा माहौल है, जैसा भी लोग हैं हमारे, सबको गुड विशेस, क्योंकि इन्हीं लोगों के बीच में रहते, इन्हीं लोगों के साथ रहते हमें वो प्राप्ति, वो सुखों की प्राप्ति हमें करना है। अच्छा, नंबर वन, इस संगम युग में वो सुख है जो कहीं नहीं मिलती। नंबर वन वो है परमात्म ज्ञान सुनने का सुख, डायरेक्ट परमात्मा से, इस स्थूल शरीर से, स्थूल कानून से परमात्मा के महावाक्य हम डायरेक्ट सुन रहे हैं। ये कितना महान भाग्य है, ये है कि नहीं? इन आंखों से भगवान बाबा को देखा ना, देखते ना, बाबा खा रहे, बाबा दृष्टि दे रहे, बाबा मुस्कुरा रहे, अरे ये सुख क्या सुख है, अब देखते रहो बस जीवन धन्य हो जाए। क्या वो बाबा की रूहानी नैन है, वो रूहानी नैनों में क्या प्यार का समुन्दर भरा है, हैं जी, क्या हम बच्चों के प्रति करुणा है, दया है, ये ये दृश्य, ये अनुभूति सत्युग में है? नहीं है। और इन कानों से वो मुरली सुना, हम तो द्वापर से सुनते आए हैं, मुरली में गोपियां नाचती हैं, मुरली के धुन में जादू है, पर सुन कब रहे हैं? रियल मुरली अब सुन रहे हैं। सत्युग में थोड़ी बाबा मुरली सुनाने आएंगे, शिव बाबा थोड़ी सत्युग में आएंगे बोलेंगे मीठे बच्चे मैं आया हूं तुम लोगों को ले जाने, ये बोलेगा? पर अब बोलते हैं बाबा मीठे बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मीठे बच्चे मैं बैठा हूं तुम सारे बोझ मुझे दे दो, है ना? ये जो हिम्मत है कौन दे रहा है? स्वयं परमात्मा सृष्टिकर्ता, कालों का काल महाकाल है जी, स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मैं बैठा हूं, तुम नहीं, तुम सोचो नहीं। ये तो सत्युग में कोई नहीं बोलेगा ऐसे, लक्ष्मी नारायण भी नहीं बोलेंगे मीठे बच्चे, जब हम उनके बच्चे बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के हम बच्चे बनेंगे, वहां थोड़े हमको आकर के वो लक्ष्मी नारायण बोलेगा मीठे बच्चे उड़ जा, दासिया हमको पालेंगे। लक्ष्मी नारायण अपने होंगे, लक्ष्मी नारायण थोड़े बच्चों को पालते हैं सत्युग में, दास दासी होंगी जो बच्चों को नहलाएंगे, बच्चों को करेंगे। पर अब इस संगम युग में हमको उठाता कौन है? हां जी, उठा के फिर मुरली कौन सुनाता है, फिर नाश्ता खिलाते हम सवेरे से लेकर रात तक, और सुलाता कौन है? बीच बीच में हमको बाबा याद दिलाते, बच्चा मैं बैठा हूं, तुम सोचो नहीं, मैं हूं आपके साथ ही हूं, आपके साथ हूं। हम भूल जाते हैं हाँ, पर बाबा तो है ना साथ में। तो हर पल में, हर पग में, एवरी स्टेप, पग पग में परमात्मा हमारा साथी बन के रहता है। ये सुख सत्युग में नहीं मिलेगा। इट इज सच अ ब्यूटिफुल सिक्योर्ड फीलिंग। कितना अंतरात्मा सुरक्षित महसूस होता है जब हम ये सोचते हैं स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, और वो कभी हमें गिरने, कष्ट उठाने नहीं देगा। जब हम ज्ञान में आए, हम सभी को लक्ष्य यही दिया गया था, जब बाबा के घर आए लक्ष्य क्या दिया गया था? आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग में होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण बनना, स्वराज, स्वर्ग की प्राप्ति करना, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारी मंजिल है। और संगम युग वो मंजिल तय करने का रास्ता है। अब जो व्यक्ति रास्ता एंजॉय नहीं करता है, वो मंजिल में भी एंजॉय नहीं करेगा। डेस्टिनेशन एंड जर्नी, मंजिल, मंजिल कितना सुखद हमको लगता है, वो सुखद वहां तब होगा जब मंजिल प्राप्त करने का जो जर्नी है, यात्रा है, उसमें भी हमें एंजॉय करना है। संगम युग ये जर्नी है, तो जर्नी में कभी थकना नहीं, जर्नी को भी हमें एंजॉय करना है। कुछ लोग अबू रोड से ऊपर आते हैं या अहमदाबाद से यहाँ आते हैं, एंजॉय करके आते बड़े मज़े से, नीचे से भी ऊपर आते हैं ना माउंट में, पेड़ देखते हैं, क्या ग्रीनरी है, बादल देखते हैं, फॉग देखते, बरसात देखते, बड़ा मज़ा, आनंद। कुछ लोग क्या है, ऊपर का वो जो शटर ओपन करके, ओपन कार वो करके उसमें खड़े भी हो जाते हैं, कोई बीच बीच में उतर करके फोटोज लेते, एंजॉय कर रहे होते हैं। वो झरने हैं, यू नो, नीचे से ऊपर आते झरने, झरने में भी भीगते हैं, एंजॉय मज़ा करके आते हैं। कुछ लोग नीचे से ऊपर उल्टी करके आते हैं, उनको लगता है भाई क्या रास्ता है भैया, हमको नहीं पसंद आता है। ऊपर जाना अच्छा लगता है, पर ऊपर तक का जो रास्ता है ना, वो पसंद नहीं आता उनको। जैसा ही सोचते हैं ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, उन लोगों को वो माइंड में ना उल्टी याद आ जाती है। फिर नींबू रखेंगे, उल्टी की गोली खाएंगे, फिर वो रखेंगे, ये रखेंगे, पानी रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बहुत सारी तैयारियां करेंगे। इतनी सारी तैयारी करने के बाद और ही उल्टी करेंगे, क्योंकि जितनी उल्टी की ही तैयारियां कर रहे हैं ना, तो उल्टी की तैयारियां कर रहे हैं तो क्या आएगी। हाँ, आप इंजॉय करना शुरू करो, आप उल्टी भूल जाओ, तो जो सोचोगे ऐसा होंगे। तो संगम युग में हम कलयुग की बातें सोचेंगे तो ये जर्नी एंजॉय नहीं करेंगे, फिर आपको थकावटी होगी। कई लोगों को ऐसा लगा हम पहले ही अच्छे थे, ज्ञान के पहले ना बहुत अच्छे थे, हमको गुस्सा ही नहीं करते थे, ज्ञान में आने के बाद बहुत गुस्सा, बहुत गड़बड़। कई लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हम पहले का जो है ना चीजें वो लेके आते हैं, उसको छोड़ के नहीं आते हैं। इसलिए संगम का जो पवित्र यात्रा, याद की यात्रा का सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। सत्ययुग में तो याद की यात्रा तो है नहीं, द्वापर कलयुग में याद की यात्रा है नहीं, तो फिजिकली यात्रा करना पड़ेगा। पर याद की यात्रा का जो सुख है संगम युग में सिर्फ मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करते थे द्वापर में, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। द्वापर युग से हमको एक आदत बन गई, पता है वो ये आदत क्या है, बहुत बोलने की, बहुत बोलने की आदत बन गई। दूसरा, बहुत सोचने की आदत बन गई, ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति क्यों इतना बोलता है, क्या बोलता है, जब ज्यादा बोलता है क्या बोलता है, आज भी मुख में मुरला डालने की कहानी सुनी ना, हाँ, तो जब ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है इसलिए बोलता है क्योंकि वो इधर उधर देखता है, इनको उनको देखता है, वो क्या कर रहा वो देखता है, वो क्या नहीं कर रहा वो देखता। हम दूसरों को बाहर हम बहुत देखते हैं, जब हम बाहर देखते हैं, जो देखते हैं वो सोचते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं। अच्छा, दो लोग जब मिलते हैं, मैंने जो देखा, मैंने जो सोचा वो मैं बोलूंगी, आपने जो देखा, आपने जो सोचा वो बोलेंगे, तो बहुत हो गया ना। हम दोनों बैठ करके चाय पी के, पकौड़े खा के बातें कर, अरे मैंने वो देखा था, अच्छा अरे तुमने क्या देखा, मैंने तो ये देखा था, तो बातें शुरू होती है तुमने वो देखा, मैंने वो देखा। इसको कहते हैं व्यर्थ चिंतन। अब संगम युग में बाबा ने हमको मनन का सुख दिया। अब आपस में बैठ करके जो व्यर्थ चिंतन करते हैं, जिसको पर चिंतन बाबा कहते हैं ना, इसमें भी मजा है, मजा आता है ना। दो चार लोग बैठो टेबल में, गरम गरम चाय हो, ऐसे मौसम हो, हैं जी, क्या मजा आता। और खास फ्रेंड्स हो जो मेरे को पसंद वाले हो, ऐसे दो चार बैठेंगे पता ही नहीं चलेगा, अरे क्लास भी खत्म हो जाएगा, हमको याद ही नहीं रहेगा, और फिर वहां जाना वो भी याद नहीं रहेगा, काम भी छोड़ करके हम बातें करना शुरू करते हैं ना, ऐसा कौन कौन करता है? है जी, बड़ा मजा आता है। वो भी मेरे पसंद के दोस्त होंगे तो और मजा आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वही जिनके साथ बैठ करके हम गप्पे लगाते हैं, बात करके खाते पीते साथ रहते, कुछ दिन के बाद वही हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। जिन बातों से हम क्लोज हुए, हम दोस्त हुए, जिन बातों को सुनने के लिए हम आपस में बैठना हमें पसंद है, कल वही व्यक्ति वही बातें सुनने में चिढ़ता है, वही बातें उनको पसंद नहीं है, वही बातें फिर तुम भी तो ऐसा करती बोलती थी ना कल, हाँ तुम क्या बड़ी, तुम भी तो उनकी उनकी बातें सुनाती हो, तो यही बात जो है झगड़े का भी कारण बनता है। बनता कि नहीं बनता? हमको लगता है कल तो ये हंस रहा था, यही बात से तो मजे से खुशी मना रहा था, अब यही बात सुन के चिढ़ क्यों रहे हैं पता ही नहीं चलता हमको। फिर हमको लगता है अब क्या बात करें, फिर हम धीरे धीरे करते हमको काम है, हम आज नहीं आएंगे, आज तुम लोग जाओ आप आपस में चाय पी लेना, हम आप चाय पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमको डर है अभी अब जाएंगे पता नहीं अब लड़ाई ना हो जाए, अब किस बात पर पता नहीं क्या बिगड़ेगा, तो डर पैदा होता है। क्योंकि ज्यादा बातें करने में, ज्यादा सोचने में नेगेटिव जरूर होगा, क्वालिटी कम होगा, उसमें सुख भी चला जाएगा, मजा नहीं आएगा, बोलेंगे पर अंदर से कहीं ना कहीं खालीपन महसूस होगा, अंतरात्मा नहीं भरेगी। बातें बेशक कर लें पर कभी न कभी दो चार दिन के बाद हमको लगेगा व्हाट आर वी डूइंग, वेस्ट टाइम, वेस्ट, क्या प्राप्ति हुई, बात कर ली, नेक्स्ट फिर क्या हुआ, आप भी खाली हाथ लौटे, वो भी खाली हाथ लौटे, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, और उल्टा हमको अभी वो बिगड़ रहे हैं, वो व्यक्ति हमसे लड़ाई कर रहे हैं, डर। तो अभी बाबा कहते हैं फिर उसका चिंतन हम करते, ये क्यों बिगड़ रहे थे, अच्छी तो थी कल, आज पता नहीं उसी बात पर उसको क्या हो गया, व्यर्थ चिंतन सोच। अभी बाबा कहते हैं व्यर्थ संगम युग में हमको व्यर्थ से मुक्ति मिलती है, तो हम मनन का मजा लेते हैं, ज्ञान के एक एक बात को जितना सोचेंगे, जितना बोलेंगे, जितना सबके साथ शेयर करेंगे, उतना आत्मा अंदर से भरपूर महसूस होती है, यू नो फीलिंग, और मन शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध कैसा होता है, जब हम ज्ञान का मनन करेंगे, ज्ञान का मंथन करेंगे, मंथन का अपना सुख है, मंथन में सुख ही नहीं बल्कि नशा भी चढ़ता है, यू नो, क्योंकि प्राप्ति है ना, आत्मा में प्राप्ति है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है मंथन करने से। ये सुख कहीं और नहीं है, सत्ययुग में भी नहीं है, कलयुग द्वापर युग में तो है ही नहीं। और तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति खुश कब रह सकेगा, जब वो हल्का रहेगा, यानी जब कोई फिक्र नहीं रहेगा, ठीक है, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो खुश रहेगा, ठीक है। तो संगम युग में बेफिक्र रहने का बड़ा वरदान है। सत्युग में तो कोई फिक्र वैसे ही नहीं है, फिक्र होते भी बेफिक्र रहना ये सिर्फ संगम युग में है, ठीक है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे सारे फिक्र मुझे दे दो। क्यों फिक्र करते हो, क्यों सोचते हो भाई? आपके लिए मैं सोच रहा हूं ना। अच्छा, छोटा बच्चा जो 6 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा सोचता है, सोचता है मैं क्या कपड़ा पहनूंगा या पहनूंगी। चलो 5 साल का बच्चा, बच्चा है, बच्चे वो सोचते कि उनके माँ बाप सोचते हैं? अरे कई घरों में 30 साल के बच्चे के लिए भी माँ बाप सोचते हैं। उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसका अपना बच्चा है, फिर भी उनके बच्चे के लिए वो माँ बाप सोचते हैं। फोन करके, बेटा तुमने खा लिया, बेटा तुमको ठीक है? अरे वो उसकी तो अपनी वो कर रहे हैं ना, तुम लोग क्यों सोचते हो? लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं उस बच्चे को। अरे उसको पर आ गया, वो उड़ के चला गया, आप क्यों पकड़ के खींच रहे हो? अच्छा, एक दिन वो बच्चे ने फोन नहीं किया, फिक्र शुरू। अरे पता नहीं, वो फोन ही नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया होगा। क्या हो गया, हो गया, वो खुद ही बाप है, खुद ही मां बने हैं। कुछ समय के बाद हमको छोड़ना पड़ता है। आप जितना पकड़ोगे उतना तो फिक्र रहेगा ही रहेगा। अच्छा, संगम युग का कितना समय है, कितना समय है? हाँ, इस वक्त इस समय में फट से शरीर छूटा, फिर क्या ले जा रहे हैं? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये ले जाना है आपको फिक्र। मैं चली जाऊंगी तो कौन देखेगा, मेरे पोते को कौन देखेगा? हाँ, कौन देखेगा? क्या कर रहे हैं हम? अरे भगवान बैठा है हमारे लिए, वो फिक्र करने के लिए बैठे हैं, और उसका कुछ नहीं पड़ा है आपको? रोज आकर के बोलते, बच्चा मैं बैठा हूं, तुम फिक्र नहीं करो, और आप किसी और की फिक्र करके बैठ रहे हो, और भगवान आपका फिक्र कर रहा है, उसका कुछ नहीं? रोज पूछता है, बच्चे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। एक दिन आपका बच्चा नहीं पूछा, आपको तो रोना धोना दुख भरा, बहुत दुख है। अरे मेरा बच्चा नहीं पूछता है, मैंने कितना बच्चों के लिए किया, वो तो ये भी नहीं पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरे पति कभी नहीं पूछता, सिर्फ डांटता ही रहता है। एक दिन भी नहीं पूछा तुमने रोटी खाई, नहीं पूछता है वो। अरे नहीं पूछने दो ना, ये पूछ 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 पूछ, क्या पूछ है ये? हनुमान का लंबा पूछ है ये, सुना? आपको पता है लंका है, जो लंका रावण का, लंका को किसने आग लगाई, कैसे आग लगाई? हाँ, तो ये पूछ है वो, सुना? जब तक इस पूछ को आग नहीं लगाएंगे ना, लंका नहीं जली। तो लंका को आग लगाना कि नहीं लगाना? हाँ, नहीं लगाना। कौन लगाएगा? महावीर है ना, हम हनुमान है ना, हनुमान को महावीर भी कहते हैं, है जी? तो कौन से पूछ को आग लगाना है, कौन से पूछ को आग लगाना है? उसने नहीं पूछा, इसने मेरे को नहीं पूछा, खाने के लिए नहीं पूछा, इतनी सेवा किया, टोली के लिए नहीं पूछा। हमने ये किया वो नहीं, छोड़ो मारो गोली ये सारे पूछ को, हो सकता? हो सकता? बड़ों ने नहीं पूछा, छोटों ने नहीं पूछे, बच्चे ने नहीं पूछा, बाप ने नहीं पूछा, अरे कौन कौन पूछेगा आपको, किस किस के पूछ चाहिए बताओ? हमने बहुत लोगों के पूछ पकड़े हुए हैं। लौकिक में कहते हैं मरने के पहले, पता नहीं सब जगह तो नहीं है पर कुछ स्थानों में भारत में ये मान्यता है, मरने वाला जो होता है ना वो गाय का पूछ पकड़ाते हैं ताकि वो स्वर्ग चला जाए। वो स्वर्ग तो जाता है नहीं, पर हम जो है ना कितने लोगों के पूछ पकड़े हुए हैं तो कैसे जाएंगे स्वर्ग? हम बाबा के बच्चे तो बन गए, सफेद साड़ी तो पहन लिए, पर पूछ तो पकड़े हुए हैं ना, एक कने कईयों के पूछ पकड़े हुए हैं, तो कहां संगम का मजा आएगा? जिसके पूछ हाथ में है तो उसी के उसी में बुद्धि लगी रहेगी। अच्छा अब बताओ पूछ जितने भी पूछ पकड़े हैं हाथ में छोड़ सकते हैं? भोजन नहीं किया, चाय नहीं पिया तो आवाज ही नहीं है। छोड़ सकते हैं? एक बात बताऊं, आप नहीं भी छोड़ेंगे ना, समय ऐसा आएगा जबरदस्ती भी छोड़ना पड़ेगा और उस समय कोई प्राप्ति नहीं, रो रो के छोड़ना पड़ेगा। और आप हंस हंस के छोड़ दो, मुस्कुरा के छोड़ दो, क्योंकि रो के छोड़ना तो है, अब रो रो के छोड़ना हंस के छोड़ना हमारे हाथ में है। अब आप क्या पसंद करना चाहेंगे? हंस के छोड़ेंगे ना? अच्छा कब से छोड़ेंगे? छोड़ दिया। मोबाइल तो छोड़ा नहीं है, वो सबसे बड़ा पूछ तो वो है। मुझे एक बात बताएंगे आप, बुरा तो नहीं मान रहे ना? हाँ एक बात बताएंगे, आप यहां किस लिए आए हो ज्ञान सरोवर में? वेरी गुड। जब आप ज्ञान सरोवर में कितने दिन से हैं? वेरी गुड। 3 दिन से कितने बार घर में फोन किया? किस किस ने फोन किया? चलो आपने नहीं किया तो घर से तो आया होगा, आपने बहुत हुशियार है। आप ये बोलते हमको करने की छुट्टी नहीं, तुम करना हम बात करेंगे। आप तो बोल सके हमने तो नहीं किया भाई, वो लोग किया तो हम क्या करें। बहुत हुशियार है। चलो मान लिया आपने नहीं किया, सच अपने मेरे को बताना नहीं है, जरूरी नहीं, अपने दिल पर हाथ रख के ये देखो कि मुझे कितनी बार घर की याद आई, लोगों की याद आई, अपने बच्चे पोते वो ये वे जो भी है, अपने धंधा अपने व्हाटएवर, किस किस को याद आया? भाई कितने अच्छे हैं, कितने ऑनेस्टली हाथ उठा रहे। माताएं हाथ उठाए, किस किस को याद आया? बहुत अच्छे। किस किस को बिल्कुल याद नहीं आया? अरे अब तो आया जब मैं बोल रही हूं, सबको आया होगा, सबको घर आया हो, घर की याद आई होगी, मैं तब से घर की याद दिला रही हूं, आया तो होगा ना, तो याद तो किया आपने। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताना, किस किस को उनकी याद आई जो हमको बहुत कष्ट दुख दिया, हमसे झगड़ा करते हैं, हमको दुख देते हैं, हमको परेशान कर रखा है, नाक में दम करके रखा है, ऐसे ऐसे की याद किस किस को आई? इतनी सो आई होगी, इतनी नहीं। आपने उन लोगों को शुभ भावना दिया कि नहीं दिया? किस किस ने शुभ भावना दिया, जिसको जिसको दुख जिस जिस जो जो दुख देते हैं उनको शुभ भावना किस किस ने दिया? इसका मतलब उनकी याद आई तभी तो शुभ भावना दी। अभी शुभ भावना भी आपने इसलिए दी, शुभ भावना भी आपने उसको इसलिए दी ताकि वो मुझे दुख न दे, इसलिए नहीं दी भी इसकी उद्धार हो। आपने इसलिए दिया भगवान इसको वैसी बुद्धि दो ताकि वो मेरे को सताए ना, तंग ना करे, ठीक बात। हाँ, तो बाबा कहते हैं मनन का जो सुख है वो संगम में है, ठीक है। और इस जीवन में रहते, शरीर में रहते, घर गृहस्थ में रहते, सब बंधन से और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरियसली सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट मोह से मुक्त जीवन संगम युग में। हमें बच्चे हैं, हमें घर हैं, हमारे सारे परिवार हैं, उसके बीच में रहते हमें पसंद करने वाले, ना पसंद करने वाले, हमसे प्यार करने वाले, हमसे नफरत करने वाले, ये सारे जो संसार है, दुनिया है, इस दुनिया के बीच में रहते वो नफरत, सुख दुख, मोह प्यार, इन सब से अतीत वाला जो सुख है वो सिर्फ संगम युग में आप एंजॉय कर सकते हैं। आपसे प्यार करने वालों से भी आप ऊपर रहो, आपसे नफरत करने वालों से भी आप डिटैच रहो, द बेस्ट थिंग। क्योंकि हम तब ये मौज, ये सुख का अनुभव तब हम कर सकते हैं जब हम परमात्म प्यार की अनुभूति करते हैं, परमात्म सुख की अनुभूति करते हैं। वो ऐसा सुख है, वो ऐसा, इसको सुख नहीं कहते, परमात्म साथ का, परमात्म गुणों का, परमात्मा का जो मेरा जीवन साथी बना है, ये एक ही जीवन है जहां पे मैं भगवान के साथ जी सकती हूं। सत्युग से लेके कलयुग तब हम इंसानों के साथ जिया ना, भगवान के साथ जीने का एकमात्र मौका अब है। और उसको सुख नहीं कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं, क्योंकि सुख का ऑपोजिट वर्ड है ना, सुख का जो विरुद्ध शब्द है ना, क्या है विरुद्ध शब्द है ना, शांति का विरुद्ध शब्द क्या है, आनंद का विरुद्ध शब्द क्या है, तो वो आनंद डायरेक्ट परमात्मा से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको परमानंद कहते हैं, क्योंकि परमात्मा से मिलने वाला वो आनंद है। कहीं सत्युग में भी आनंद की प्राप्ति नहीं, सुख की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति नहीं, यहां मिलता है। वो मन, अंतरात्मा इतना तृप्त हो जाता है, क्योंकि वो जो आनंद है जिसमें सुख भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, वो ऐसी अनुभूति है, ऐसा टेस्ट है, वो जो मुंह में स्वाद उसका ऐसा है जिसमें आत्मा एकदम भर जाए। जन्म जन्म का जो प्यास है, जन्म जन्म का जो आत्मा में जो भूख है, उस सारे प्यास और भूख उस आनंद की, परमात्म प्यार की प्राप्ति में खत्म हो जाता है। फिर हम धोते पोते, पति नहीं पूछता, पत्नी नहीं पूछती, वो ये सारा पोछ को आग अपने आप लग जाती है, क्योंकि अंदर इतना है मेरा, बाबा से हमने इतना प्राप्त, आत्मा ने की है, फिर मन जाएगा ही नहीं, वो इच्छा ही नहीं उठती है। ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, ये सुख जो है ना, बाबा का बच्चा बन करके वो परमात्म प्यार के अनुभव नहीं किया तो क्या किया। तो कितने जन्मों के घाव जो आत्मा में लगी है ना, वो घाव का मरहम है वो परमात्म प्यार। कितने लोगों ने आत्मा में घाव लगाया है ना, दुख दुख लगाया, दर्द दिया, वो दुख घाव दर्द को मरहम कौन देगा? कोई इंसान तो नहीं दे सकेगा, क्योंकि तो आत्मा पर लगी है ना। तो वो प्यार जितना निस्वार्थ है, इतना शुद्ध है, इतना रूहानी है, दैहिक नहीं है ना। बाबा का प्यार वो रूहानी और बेहद प्यार है बाबा का। वो जब आत्मा वो प्यार का सुख आनंद प्राप्त करती है तो बस जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको पूरा अच्छा सा दूध पेट भर के आप दूध दे दो और एकदम साफ उसका कपड़ा बिस्तर करके उस बच्चे को अपने गोद में सुला करके वहाँ आराम से सो जाएगा, वो रोएगा ही नहीं, हलचल ही नहीं उस बच्चे में, क्योंकि पेट भी भरा है और उसका बिस्तर भी साफ है। तो बच्चा रोएगा रोएगा। अब अंतरात्मा जो है, मन है, हम बाबा के बच्चे तो बन गए, पर अंदर मन जो है ना थोड़ा थोड़ा रोता है अभी भी अंदर में दुख है। ऊपर ऊपर से बहुत ज्ञान बोलते हैं, बाबा मिल गया, सब मिल गया, वो है, ये है, हम खुश है, अरे कुछ नहीं है, इतना खुश नहीं है, क्योंकि हम संगम का सुख अनुभव नहीं कर रहे हैं। अभी तक वो कलयुगी बातें हैं। दो बातें ध्यान से सुनेंगे। नंबर वन, हमारे मन में कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस है, प्रश्न है। सेकंड, डाउट है। डाउट समझते ना, कोई भी प्रकार के शंका है। नंबर थ्री, कोई भी प्रकार का बोझ है, तो हम संगम युग के सुख अनुभव नहीं कर सकते। और क्वेश्चंस कई बार हम दादी गुलजार कई बार ये क्लासेस में सुनाते रहते थे कि पांच बातें हैं व्यर्थ जो चलता है ना मन में, हम मनन का जो सुख नहीं लेने का कारण, जो प्रश्न आते हैं मन में, क्यों ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों ऐसे करती है, ये क्या है, कौन, कब, ये कैसे, ये क्यों, क्या 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 है जी, ये प्रश्न जब मन में होगा तो मन मौज का अनुभव नहीं कर सकता। आपको पता है ये रामायण में श्री राम जी को 14 साल वनवास मिला, सुना है ना, किसके कारण मिला, कौन कौन थी जिसके कारण उसको वनवास मिला? हाँ, तो ये कह 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 जो करते हैं ना हम, वो कह के ही है। कह के मन में आ गया तो हम वनवास, तो फिर भटकते रहो, मन तो भटकता रहेगा। हम बैठे योग में इधर उधर मन चला जाता है, इधर उधर देखते भी है, कई लोग बैठे योग में हैं पर उस गेट से वो आई तो हम पूरा ऐसा घूम के देखेंगे जैसे कि कभी इंसान को देखा ही नहीं हो। वो जब तक वो आए और आकर के बैठ न जाए हम देखेंगे, क्योंकि मन प्रश्नों से, अच्छा अभी क्यों आई है ये कोई टाइम है क्या उसको आने का, क्यों अब क्यों आए, अरे कभी भी आए, क्यों आए, क्या मतलब, आपका अपना काम करें। हम दूसरों को देख के बहुत क्यों 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 क्या 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 बहुत करते हैं। और एक तो ये, और कौवा भी तो क्या 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 करता है ना, और कौवा कैसा है, हंस मजे से अपने में लगे रहते हैं, उसके क्या क्या की नहीं जाता उसमें, हंस जो है ना एकदम सफेद हंस, उसको क्यों क्या क्या ये प्रश्नों से अपने आप को अलग कर देती है, सिर्फ वो मोती लेता है खुशी से, वो हंस जो है ना अपना पानी वो तैरता रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं किसी से, वो आए ना आए, अब आए, कब आए, नहीं आए, आए स सफेद साड़ी पहन के आए, काला साड़ी, उसको कोई लेना देना नहीं। हमको लगता अरे भट्टी में आए, देखो ये हरा कलर पहन के बैठी है, ये कोई बात है? अरे क्या आपको क्या लेना देना, मन बस चलता रहता इधर उधर इधर उधर। ठीक है, प्रश्न, नो क्वेश्चंस। अब ये प्रश्न से मुक्त आत्मा कब होगी? जब हमको जो होता है, ये कौन सा युग है, कौन सा संगम युग? हाँ, कल्याणकारी माना जो होता है, जो होता है, जो होता है, सिर्फ अच्छा ही नहीं, जो होता है वह सही हो रहा है। अच्छा तो तब है ना जब सही हो, जब सही ना हो वो अच्छा थोड़ी माना जाएगा। संगम युग में जो होता है वो सही हो रहा है, क्यों कि ड्रामा कल्याणकारी है इसलिए अच्छा है। ठीक है, जब अच्छा होता है तो चेहरा कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा आप समझो, जाते जाते फिसल के गिर गए, चेहरा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जो गिरता है उसका चेहरा बोलते हो, आसपास वालों का नहीं। जो गिरेगा, गिरना नहीं भाई कोई नहीं गिरे, पर एक मिसाल बोल रही हूं, मानो ऐसा कुछ हुआ तो चेहरा कैसा होना चाहिए, होगा, होगा आपके बाद होगा, क्योंकि अच्छा हुआ इस सब के तब थोड़े में चुप्त हो गया ना, जो बहुत बड़ा होना था वो थोड़े में चला गया, गुड, वेरी गुड। रेस्ट तो मिल जाता है, चार दिन पैर फ्रैक्चर हुआ, चार दिन आराम, हाथ में मिलेगा थाली, वेरी गुड। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी प्रकार का फिकर, व्यर्थ चिंतन और दुख, फिकर भी तो दुख ही है ना। आपको पता है संसार में सबसे भारी चीज क्या है? सबसे संसार में सबसे भारी चीज है दुख, उठाया नहीं जाता, बहुत भारी होता है। तो मन में थोड़ा सा भी दुख होगा उड़ नहीं सकेंगे, थोड़ा सा भी फिकर होगा उड़ नहीं सकेंगे। अब बोलते रहो मैं उड़ रही हूं, मैं उड़ रही हूं, कहीं नहीं उड़ रहा है, यही घूम रहा है। इसलिए आज के बाद और फिकर मन में ना हो, ये तब संभव है जब हम संपूर्ण रूप से बाबा पर इतना विश्वास, उस बाबा है वो देखेगा, बाबा है, बाबा है, वो दिल से बाबा के प्रति प्यार और विश्वास होगा, फिर आप कभी फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जो होगा वही होगा ना। आप कितना भी सोचो, कितना भी फिक्र करो, आप क्या कर सकते हैं, तो क्यों फिक्र करना? आप तो अपना ड्यूटी ठीक से किया, समय से किया, फिर भी नहीं हुआ तो फिक्र करने से क्या होगा, और ज्यादा टेंशन, मैंने इतना किया ये नहीं हुआ, नहीं होना था नहीं हुआ, फाइन इजी, टेक इट इजी, बहुत ज्यादा सोचो नहीं। हमारे पास सोचने के लिए ये संगम युग नहीं है, मुस्कुराने के लिए है, खुश रहने के लिए है, खुश रखने के लिए है। हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं, हम कौन है, कौन है, हम राजयोगी हैं। खुश रहना है, ठीक है, रहेंगे हल्का और खुश, रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कौन कौन रहेगा खुश? आपके बाद, आपसे जो हो गया आपके बाद, थैंक यू वेरी मच, तो खुश रहेगा, उसका चेहरा कैसा रहेगा? हाँ, तो कब से मुस्कुराएंगे आप? तो अभी दिखा दो, मुस्कुरा के थोड़ा दिखा दो। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सभी। तो हमेशा ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाए रखना। सारा जीवन रोते रहें, भगवान मिलने के बाद भी रोते रहें, ये तो सही बात नहीं ना, सही बात नहीं ना। बच्चा पैदा होता है वो रोएगा नहीं, उसको ऐसा मार के भी रुलाते हैं। वो उस समय रोना हमारी चॉइस नहीं थी, पर जब हम शरीर छोड़ते हैं तो मुस्कुरा के हंस के हैप्पीली जा सकते हैं ना, विदा खुशी खुशी हो सकते हैं ना, वो हमारे हाथ में है कि नहीं? रो रो मर भी रो रो के मरना है कि खुशी से जाना है? तो खुशी से जाएंगे तब जब रहते हम खुशी से रहेंगे, ठीक है। हर दिन उठते ही जैसे आप बाल बनाते हैं, आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, फिर सारा बैच पहनते हैं, फिर मोबाइल लेते हैं, ये सब याद रहता है ना, ऐसे ही आप कमरे से बाहर निकलने के पहले एक बार आईने में देख लेना, मैंने मुस्कुराहट भी पहना है कि नहीं पहना है। यदि वो नहीं पहना है तो अधूरा ड्रेस है। कोई अधूरा कपड़ा पहन के बाहर निकलेगा? हाँ, तो मुस्कुराहट के बगैर अधूरा ड्रेस है, हाफ ड्रेस्ड। यू लाइक हाफ ड्रेस्ड? सी, तो अभी बाहर कैसे निकलेंगे? तो घर में जाते ही मुस्कुराहट निकाल के रख देना, बाहर जाते मुस्कुराहट पहनना, ऐसे सबसे ज्यादा तो घर के अंदर चाहिए, ठीक है। ये सोते वक्त भी पहन के सो सकते हैं, कोई आपको नींद में देखे ना, उनको लगे कोई राधा सोई है, कोई कन्हैया सोया है, कोई देवता सोई है। अरे क्या इनका चेहरे, अरे बाप रे क्या स्माइल है, ऐसा लग रहा पता नहीं कोई फरिश्ता सोई है, ऐसा लगना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं चलने योग कर रही है कि सोई है, इसका मतलब ये नहीं कि अब सो जाना, ठीक है। हाँ, जब सोते समय की बात कर रहे हैं तब देखना आपको हर पल आप एंजॉय करेंगे। और लास्ट बात, प्लीज कभी भी एक क्षण के लिए भी बाबा को साथ के बिना नहीं रहना, बाबा को अपना साथ रखना। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो भी वो पिता है ना हमारा, माँ है ना। तो आप बड़े बच्चे बनेंगे तो आपको शर्म आएगा, छोटा बच्चा बनेंगे तो माँ के बगैर बच्चा कहीं भी नहीं जा सकता है ना। तो आप बड़े बच्चे कि छोटे बच्चे? हाँ, तो जब परमात्मा माता पिता साथ में हैं, हम बच्चे हैं, तो बच्चे बने रहेंगे तो कोई फिक्र नहीं रहेगा। बच्चा एंजॉय करते ना, कूदता है, खेलता है, खाता है, मजा करता है। तो ये हम बच्चे बनेंगे, हम एंजॉय करेंगे। तो मन में बाकी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते मेरे साथी कौन है? हजार बुझा वाला बाबा मेरे साथ है। जो जब भी काम आपसे नहीं बन पड़ता, अब बाबा को बोलो बाबा मेरे से नहीं हो रहा, आप कर लो, तो देखना बाबा करेगा, करते हैं बाबा। ओके, ओम शांति। भट्टी का आप सबका आज लास्ट दिन है ना, हाँ? तो इसीलिए क्या आपके साथ ले जाना है वो थोड़ा सा हिंट दिया, क्योंकि रियल भट्टी तो जाने के बाद शुरू होती है। या तो सब कुछ ठीक ही है ना, या तो कोई फिक्र ही नहीं है, पर फिक्र तो वहां है ना जब जाएंगे तब, हाँ? इसलिए अब से मन को अप्रिपेयर कर लो, ये संगम की घड़ियां हैं, ये संगम के अमूल्य शरीर हैं, ये संगम का मन है, तो इसमें खुशी के अलावा, एंजॉय के अलावा हमें कुछ नहीं होना है। एवरी मोमेंट, हर पल मुझे कैसा एंजॉय करना है, मुझे कैसा खुश, वो खुद सोचो। ओके, ओम शांति।